بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یوکرین کا بحران۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جہاں ناظرین، یوکرین کے مشرقی علاقوں میں صورتحال روز بروز کشیدہ اور بحرانی ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں اس وقت کے قانونی صدر کی جانب سے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط نہ کیے جانے کے فیصلے کے خلاف شروع ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد صورتحال میں جو ڈرامائی تبدیلی آنا شروع ہوئی وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں، جنہیں مغربی ملکوں اور امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اور رائٹ سیکٹر نامی انتہا پسند گروہوں کے ہاتھوں، جن کے دوران دسیوں عام شہری اور سیکورٹی اہلکار مارے گئے تھے، قانونی صدر وکٹر یانکوویچ کو اقتدار مجبوراً چھوڑنا پڑا اور وہ کیف سے مشرقی علاقوں کی جانب چلے گئے۔ اس کے بعد یوکرین کے مشرقی علاقوں میں، جہاں اکثریت روسی زبان بولنے والوں کی ہے، یوکرین میں طاقت اور پرتشدد مظاہروں کے ذریعے اقتدار میں آنے والی عبوری حکومت کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور 16 مارچ کو جمہوریہ کریمیا نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے اپنے آپ کو یوکرین سے الگ کر کے روس میں ضم کر لیا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس پر امریکہ اور مغربی ممالک بری طرح چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے اس کا ذمہ دار روس کو قرار دیتے ہوئے ماسکو کے خلاف یکے بعد دیگرے کئی پابندیاں عائد کر دیں۔ جی ہاں، حالات یہیں پر نہیں ٹھہرے، بلکہ مشرقی اور جنوبی یوکرین کے دیگر علاقوں میں بھی یوکرین سے علیحدگی کی تحریک زور پکڑ گئی۔ چنانچہ 11 مئی کو دو صوبوں دونیسک اور لوہانسک میں بھی یوکرین سے علیحدگی کے لیے ریفرنڈم ہوا، جس میں 90% سے زائد لوگوں نے یوکرین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا۔ اس فیصلے سے تو مغربی ملکوں اور امریکہ کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اس پورے عرصے میں حالات کو بات چیت سے حل کرنے کے بجائے، امریکہ اور مغربی ملکوں نے جنیوا سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف یوکرین کی عبوری حکومت کو مشرقی علاقوں میں فوجی کارروائی پر اکسایا، بلکہ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق بڑی تعداد میں مسلح امریکی ایجنٹ بھی مشرقی یوکرین پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ یوکرینی فوج کے ساتھ مل کر ان علاقوں میں روس نجات باشندوں کی تحریکوں کو کچلنے میں مصروف ہیں۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ دونیسک اور لوہانسک میں ریفرنڈم کے بعد علاقے کے باشندوں نے تمام سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ان علاقوں میں یوکرینی فوج اور روس کے حامیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ سلویانسک شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ اب تک 600 سے زائد یوکرینی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ جنیوا سمجھوتے میں کہا گیا تھا کہ یوکرینی حکومت مشرقی علاقوں سے اپنی فوج واپس بلا لے گی اور فوجی کارروائیاں بند کر دیں گی، اور روس بھی امن کے عمل میں تعاون کرے گا، لیکن امریکہ اور مغربی ملکوں کی ایما پر نہ صرف یہ کہ یوکرینی فوج مشرقی علاقوں سے واپس نہیں بلائی گئی، بلکہ وہاں لڑائیوں کا دائرہ مزید پھیلتا جا رہا ہے، اور یوکرینی فوج توپ خانوں، بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ ان علاقوں میں جنگ میں مصروف ہے۔ دوسری طرف روس پر جہاں مغربی ملکوں اور نیٹو کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، وہیں روس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور کریمیا اب روس کا ہی حصہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیٹو جس طرح سے روس کو دھمکی دے رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کے دفاع کی باتیں کر رہا ہے، کیا اس علاقے میں روس اور مغرب کے درمیان براہ راست کسی فوجی ٹکراؤ کا امکان ہے؟ کیا یوکرین کے وزیر اعظم کا یہ بیان کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ موجود ہے، اور جس کا حوالہ جمعے کو نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بھی دیا ہے، صحیح معنوں میں موجود ہے؟ دونیسک اور لوہانسک نے ریفرنڈم کے بعد اقوام متحدہ سے ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیے جانے کا جو مطالبہ کیا ہے، اقوام متحدہ وہ قبول کرے گی، یا پھر دونوں جمہوریاں بھی روس میں شامل ہو جائیں گی؟ اور اگر روس میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ امریکہ اور مغرب کو کیا یوکرین کے معاملے میں اپنے اندازوں میں غلطی ہوئی، اور اب اس بحران سے نکلنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ مگر ہمارے ساتھیوں نے اسی سلسلے میں ایک اور رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
یوکرین کا بحران بدستور جاری ہے اور حالات کشیدہ ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ مشرقی یوکرین سے علیحدگی کے حق میں ریفرینڈم ہو جانے کے بعد مشرقی ریاست دونیسک نے الیگزینڈر بارودائی کو اس ملک کا وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ ووٹنگ کے ذریعے ہونے والے اس انتخاب میں 19 وزراء کا بھی انتخاب عمل میں آیا ہے، جبکہ آئندہ پیر کے روز کابینہ کے کل 27 وزراء کا انتخاب مکمل کر لیا جائے گا۔ ادھر روس کے وزیر اعظم میدویدیف نے اعلان کیا ہے کہ بعض ملکوں کی برہمی کے باوجود کریمیا کے بارے میں ان کے ملک کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے سینٹ پیٹرزبرگ میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ کریمیا کے بارے میں روس نے جو موقف اختیار کیا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے روس سے کریمیا کے الحاق کو روسی علاقہ اسے واپس کیے جانے کے مترادف قرار دیا۔ روس کے وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کریمیا کو روس سے ملحق کیے جانے کی بنا پر بعض ممالک میں شدید برہمی پائی جاتی ہے، جبکہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اس سے پہلے یوکرین میں خانہ جنگی کے وقوع پذیر ہونے کی بابت خبردار کر چکے ہیں۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں یوکرین کے باشندوں کی ہلاکت اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سرگئی لاوروف نے یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں اضافے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یوکرین کے بحران کے حل کے لیے یورپ اور امریکہ کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی کو ہوا دینے کے بجائے مل بیٹھ کر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور روس یوکرین کے بحران کے حل کے لیے ہر قسم کی گفتگو کے لیے آمادہ ہے۔ ادھر خود ساختہ جمہوریت دونیسک کے رہنما نے ماسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس میں شمولیت کے لیے دونیسک کی درخواست کو قبول کرے۔ خود ساختہ جمہوریہ دونیسک کے رہنما ڈینس پوشیلین نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ماسکو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دونیسک کو روس میں شامل کرنے پر، جس کی سرحدیں روس سے ملتی ہیں، غور کیا جائے۔ اس درمیان روس نواز متعدد لیڈروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماسکو سے کہا ہے کہ وہ دونیسک کو روس میں شامل کرنے پر غور کرے۔ داخلی سطح پر یہ واقعات ایک ایسے وقت رونما ہو رہے ہیں جب مشرقی یوکرین کے صوبوں دونیسک اور لوہانسک کے عوام نے گزشتہ اتوار کو ہونے والے ریفرینڈم میں واضح اکثریت کے ساتھ یوکرین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ دراصل خبریں ہیں کہ امریکہ اور کچھ یورپی ممالک روس کے خلاف لگاتار پابندیاں بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے مزید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بے شک مغرب روس کے خلاف پابندیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، مگر مغربی حکومتیں خود بھی اس سلسلے میں اپنی حکمت عملی سے مطمئن نہیں ہیں۔
جی ناظرین، اب چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر بیرسٹر طاہر واسی صاحب۔ السلام علیکم جناب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
علیکم السلام،
شکریہ۔ طاہر واسی صاحب، جمہوریہ دونیسک کے عوام نے اور وہاں کی جو مقامی فورس ریفرنڈم کے بعد تشکیل پائی ہے، اس نے یوکرینی فوج کو مہلت دی تھی 24 گھنٹے کے اندر وہ نکل جائے، وہ مہلت ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، صورتحال آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
علی عباس بھائی، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا، مجھے باقی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
جی میں دوبارہ سوال کرتا ہوں،
اسٹوڈیو کا شور آ رہا ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
دو روز قبل خود ساختہ جمہوریہ دونیسک جو ریفرنڈم کے بعد جس نے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے روس سے، یوکرین سے، وہاں کی جو اپنی سیکورٹی فورس ہے، وہاں کی جو آرمی فورس ہے، انہوں نے یوکرینی فورس سے کہا تھا کہ اب وہ اس علاقے سے نکل جائیں، 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی، لیکن یوکرینی فوج وہاں سے نہیں نکلی، نتیجے میں گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، تو صورتحال کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے بیرسٹر طاہر واسطی صاحب کی خدمت میں۔ طاہر واسطی صاحب
جی،
جی ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی اب پہنچ رہی ہے، جی ہاں شکریہ۔
اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو تو جواب ارشاد فرمائے، تکرار مقررہ
سے۔ میرا سوال نہیں، معذرت خواہ ہوں، سوال نہیں سنا میں نے آپ کا۔
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جمہوریہ دونیسک کی جو خود ساختہ جمہوریہ ہے، جہاں ریفرنڈم ہوا تھا، جہاں کے عوام نے یوکرین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا پچھلے 11 مئی کو، وہاں پر اب یوکرینی فوج کے ساتھ ان کی باضابطہ اور گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، تو صورتحال آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
میں صورتحال اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ ویسٹ امریکہ خاص طور پہ اور یورپ، یہ یوکرین میں کیا کرنا چاہتا ہے یہ کلیئر نہیں ہے۔ یہ جو حرکتیں یوکرین میں کر رہا ہے علی عباس بھائی، اس کی اپوزٹ حرکتیں یہ ایجپٹ میں کر رہا ہے، اس کی اپوزٹ حرکتیں یہ سیریا میں کر رہا ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے بہت سارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اگر کسی ملک میں کسی عوامی حکومت کو زبردستی ہٹا دیا جائے اور اس پر اپنا ایک صدر امپوز کر دیا جائے، امریکہ اور یورپ یونین ایک صدر امپوز کرے اور اس ملک کی عوام اس صدر کے خلاف رپورٹ کریں اور وہ کہیں کہ ہمارا جو پچھلے 100 سال کا ایک دوسرے ملک سے رابطہ ہے، ہم اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے آپ کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، آپ کے ضابطوں کو قبول نہیں کرتے، اور ہم اس ملک کے ساتھ जुड़ना चाहते हैं, जिसके साथ हम पिछले सैकड़ों साल से जुड़े हुए थे, जिसकी ज़ुबान हम बोलते हैं, जिसकी सकाफत हमारी सकाफत है, और जो हमें वेस्ट की, यूरोप की और अमेरिका की जो ऑनस्लॉट है उससे बचाना चाहता है, जो हमारे घर में चूल्हे को जलता देखना चाहता है। तो उस सूरत हाल में जब आवाम अपने रेफरेंडम के जरिए हक राय दही का इस्तेमाल करके रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो कोई जवाज नहीं है इम्पोज गवर्नमेंट का, सिवाय इस वजह के अमेरिका और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन उसकी हिमायत कर रहा है, वो मुल्क ज़बरदस्ती किसी इलाके की मेजोरिटी को अपने साथ मिला के रखे और उन पर जुल्म करे, इस बात के कतई नज़र कि चाहे उन घरों में चूल्हा जले या ना जले, गैस आए ना आए, रोटी बने या ना बने। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यूक्रेन चाहता यह है कि इस छोटे से मामले को, जिसमें अवाम ने अपने हक रायदही इस्तेमाल किया और अमरीका जाके रशिया के साथ मिल गए, जिनके साथ ज़ुबान बोली जाती है, कल्चर है और सैकड़ों साल का, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, रिश्ता है, उस मामले को अब ये फौजी बगावत और हमला करके एक जंग की सूरत हाल में धकेलना चाहते हैं, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में फरमाया और आपने खुद कहा कि ये जनेवा मुज़ाकरात के भी और जनेवा कन्वेंशन के मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल कानून के ख़िलाफ़ है। जब रशिया और ये तमाम लोग एक टेबल पर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं और हक़ रायदही इस्तेमाल करके वहाँ गए हैं, तो इस वक्त रशिया के साथ और उन इलाकों के साथ जिन इलाकों ने लोगों ने अपने आप को रशिया के साथ इलहाक करार दिया है, जंग जो है इसका ना कोई मॉरल जवाब है और ना ही कोई कानूनी जवाब है।
जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर और सरकर्दा सहाफ़ी जॉन दयाल। अदावर जनाब, जॉन दयाल साहब, शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जमहूरियत दोनेस्क, जो अब खुद साख्ता जमहूरियत जिसे कहा जा रहा है, जी शुक्रिया, और लोहानस के आवाम ने 11 मई को एक बार फिर रेफरेंडम किया, इससे पहले क्रेमिया के लोगों ने रेफरेंडम किया था, लेकिन मगरिब इस पर एतराज़ कर रहा है, इन इलाके के बाशिंदों को दहशतगर्द कह रहा है। एक तरफ तो मगरिब आवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किए जाने की बात करता है, दूसरी तरफ जब आवाम अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत या अपनी जमहूरियत का इंतखाब करते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, तो फिर मगरिब कहता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं। ये दोहरा मियार, दोहरा मापदंड, दोहरा जो स्टैंडर्ड, इसको आप क्या कहेंगे?
इसको क्या कह सकते हैं, दोहरा मापदंड है, दोहरी जुबान है, अपने इलाके में कुछ और करते हैं, कुछ और कहते हैं, दूसरे इलाके में चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पर एक नया कानून लाते हैं, एक नया मापदंड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो और एक ख़तरा दिख रहा है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, वो ये है कि इन्होंने अरबपतियों से, करोड़पतियों से मिलकर प्राइवेट मिलिशियाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जो आम लोग हैं, जिन्होंने अपना वोट दिया था, जिन्होंने कहा था कि हम रूस के साथ जाना मांगते हैं, उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक नया, एक पेड मिलिशियाज़ का जो एक ज़माना से एक आ गया है, ये एक नया डायमेंशन ला रहा है, जिसकी अब हमको थोड़ा सा बहुत इस पर जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे के ज़ोर पर, वेस्ट के सपोर्ट के ज़ोर पर, लोगों ने, जो जनसाधारण ने, जो आम आदमी ने जो अपनी राय थी उसको कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ एक तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। मामला एक तरीके से देखा जाए तो जानबूझ के कदम दर कदम किस तरीके से उसमें ज़्यादा उबाल आए, किस तरीके से कन्फ्रंटेशन की जो मौजूदगी अभी है उसको और किस तरीके से ज़्यादा किया जाए, उसको किस तरीके से और उस आग में तेल डाला जाए, इसकी तरफ मेरा ख्याल है जो वेस्ट है, अमेरिका है, इस तरफ आगे अग्रसर है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। चलते हैं हॉलैंड, जहाँ पर मौजूद हैं सियासी उमूर के माहिर जनाब मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम
बेग साहब। अभी जॉन दयाल साहब ने एक बात की तरफ, एक नुक्ते की तरफ इशारा किया। गुज़िश्ता चंद साल से ये देखा जा रहा है कि मगरबी ताकतों और जो अपने को नाम नहाद सुपर ताकत कह रही हैं, उनकी एक रविश, एक चलन ये बन गया है कि अगर वो किसी मुल्क में हुकूमत को गिराना चाहती हैं या अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर हुकूमत लाना चाहती हैं या अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती हैं, तो वो किराए के मुसल्ह एजेंटों को भेज देती हैं। आप देखें कि शाम में उन्होंने मुसलमान ग्रुप के नाम के तौर पर कुछ मुख्तलिफ ग्रोहों को मुख्तलिफ मुल्कों से, जो दहशतगर्द हैं दर हकीकत, उनको असलाह देकर भेजा اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں جبکہ در حقیقت وہ دہشت گرد ہیں. اسی طریقے سے آپ یوکرین کو دیکھیں, یوکرین میں جو رائٹ سیکٹر نامی انتہا پسند گروہ ہے ان کو انہوں نے اسلحوں سے لیس کیا, اور پھر ذرائع ابلاغ نے یہاں تک کہا ہے کہ امریکی ایجنٹ, خود امریکی ایجنٹ مسلح ہو کر یوکرین میں پہنچے ہیں اور ان لوگوں کی آواز کو, ان لوگوں کے مطالبوں کو کچل رہے ہیں جو اپنی آزادی چاہتے ہیں, جو اپنے حق کے لیے ریفرنڈم کے ذریعے اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مطالبات کو پورا کرانے کی کوشش کریں. تو یہ جو نئی روش پیدا ہوئی ہے مغربی ملکوں اور امریکہ کی طرف سے, ایک طاقت کے ذریعے مسلح ایجنٹوں کو بھیج کر حکومت کو گرایا جائے یا اپنی حکومت کو وہاں برسر اقتدار لگایا جائے, تو یہ روش عالمی امن کے لیے کتنی خطرناک اور سازگار ہو سکتی ہے؟
جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور یہ دیال صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی, اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ پرائیویٹ ملیٹیا یہ یوز کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے اور لڑائی ان کی جاری ہے, اور مطلب یہ پیسے کے زور پر یہ سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل یہ شروع سے ان کی یہ روش رہی ہے کہ مذہب کے نام پہ یا کسی اور موٹیویشن دے کر یہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں, اگر کچھ بھی نہ ملے تو بس پیسے یہ دے کر لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ آپ, یہ دراصل گیم صرف یہ پاور کی ہے اور یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, جبکہ یہ بالکل پرامن طریقے سے ان کے ریفرینڈم کے تھرو فیصلہ ہو چکا ہے, ان کو یہ قبول کر لینا چاہیے, لیکن یہ اب یہ نہیں چاہتے کہ یہ کنٹرول کر سکیں, اور میرے خیال میں یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے, کیونکہ اگر یہ یہ جو آرمی ہے پرائیویٹ اگر یہ سٹارٹ ہوگی, یا اب جس طرح کی لڑائی میں دیکھ رہا تھا آج بھی, اور یہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا علاقے کو اور وہ لڑے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے پھر رشیا اپنی جو ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر وہ موو کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرے خیال میں ایک بہت خطرناک صورتحال ہے ان کو, یہ جو ان کے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ملٹری ہے یہ ان کے کوئی بہت بزنس مین ہے بہت امیر, ان کی طرف ان کے یہ ہیں بندے ہیں جو کہ یہ کنٹرول کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے.
شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا. طاہر واسطی صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جب کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, تو ایک طرف مغرب یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ کریمیا کا ریفرنڈم ہو یا دونیسک کا یا لوہانس کا, یہ سب غیر قانونی ہے, تو جب غیر قانونی ہے اور غیر قانونی قرار دے کر وہاں پر جنگ شروع ہو چکی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیٹو اور روس کے درمیان یوکرین کے میدان میں کسی طرح سے براہ راست فوجی ٹکراؤ کا امکان ہے؟ جیسا کہ راس موسن نے کل کہا کہ ہم اپنے ممبر ملکوں کے دفاع کے لیے ہر حال میں تیار ہیں.
میں سمجھتا ہوں جنگ باقاعدہ نیٹو اور یوکرین کے درمیان تو ابھی دور ہے, چونکہ جو لوگ اس جنگ کو اور اس ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, ان کے پاس خود کوئی قانونی جواز نہیں ہے اس حکومت کو یوکرین کے عوام پر مسلط کرنے کا جس کا چناؤ نہیں کیا گیا تھا, جو منتخب حکومت نہیں تھی, اور ایک منتخب حکومت کے صدر کو زبردستی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, اور جو آپ کے ناظرین ویڈیو دیکھنا چاہیں ایسی بے شمار ویڈیو موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, جن میں وہ سنائپرز کو بھی دکھایا گیا ہے کہ جب کچھ ہزار لوگوں نے مظاہرے کیے تو سنائپرز نے, جو یورپین یونین کے بھیجے ہوئے تھے اور امریکہ کے بھیجے ہوئے تھے, انہوں نے فائرنگ کی اور دونوں لوگ مارے گئے. تقریباً انیشیلی مجھے یاد ہے کہ 30 آدمی تو پولیس کے مارے گئے تھے, جس سے یہ پتہ لگا کہ جو مظاہرے کرنے والے تھے اس لیجیٹیمیٹ حکومت کے خلاف وہ مسلح تھے, اور انہوں نے جا کے ان پہ حملہ کیا, اور اس طرح زبردستی یورپین یونین اور امریکہ کے توسط سے جو منتخب حکومت کے صدر تھے ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا. اب جن لوگوں نے یہ خود غیر قانونی حرکت کی ہو, کیا ان کی زبان یہ بات کہتے ہوئے شرماتی یا ہچکچاتی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو رہا ہے؟ آپ کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ اس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں جو عوام نے وہاں کی بنایا تھا, اور اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے ریفرنڈم کرتے ہیں, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور اکثریت کے ساتھ ایک فیصلہ کرتے ہیں, یا آپ اس کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں جس کو آپ نے خود توڑا उस मुल्क की जमहूरी हुकूमत के सदर को वहां से निकाला और अपनी पसंद की हुकूमत उन पर मुसल्लत की, ये जानते हुए, जबकि यूक्रेन के अवाम इस बात को समझते थे कि भाई आपने ना उनको पैसा कभी दिया, ना आपने उनको ये एड दी कि रशिया ने आज तक जो गैस के बिल उनके खिलाफ रेज किए हुए हैं उनको दें, ना आपने ये परवाह की कि वहां पे फूड है लोगों के घर में या नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि यूक्रेन किसी ना किसी तरह आकर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए और जो दूसरी यूरोप जो जो रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर मत बने। आपने कोई फाइनेंशियल इमदाद नहीं की, आपने कोई मॉरल इमदाद नहीं की, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह यूक्रेन के मादनी और जो दूसरे वसाइल हैं उन पर आपका कब्जा हो जाए, इससे बेखबर होते हुए कि यूरोप के अवाम, यूक्रेन के अवाम खुद क्या चाहते हैं, उनके अवाम के रशिया के साथ क्या टाइज हैं। आपने वहां बिल मंजूर करवा दिया जिसमें कह दिया कि रशिया की लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज नहीं होगी, यूक्रेन की लैंग्वेज बनाई जाएगी, ये बगैर सोचे समझे हुए कि पूरा ईस्ट जो है मशरक और 70% आबादी जो है वो रशियन जुबान बोलती है। तो ये जो इम्पोजिशंस थी इसने उनकी आवाम को ये मजबूर किया कि ऐसी हुकूमत जो वेस्ट और अमेरिका हम पर मुसल्लत करना चाहता है, हम ऐसी हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते, और उन्होंने हक रायदही इस्तेमाल करके अपने आप को उस हुकूमत के साथ शामिल कर लिया। तो इस सूरत हाल में मैं जंग को फौरी तौर पर तो नहीं देखता, चूंकि आज अगर जंग हो गई और रशिया ने अपनी गैस पाइपलाइन बंद कर दी तो यूरोप के बेशुमार ममालिक, खुद बरतानिया जिसमें मैं रहता हूं, यहां पर तो हमारे जो है हीटिंग खत्म हो जाएगी और चूल्हे नहीं जलेंगे। तो जंग तो शायद फौरी तौर पर मुमकिन ना हो, लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक है। मेरा ख्याल है कि रशिया इस टैक्टिक में नहीं आएगा, चूंकि इससे वहां की आवाम मुतासर होगी, ये नहीं कि सिर्फ रशियन मफाद मुतासर होंगे।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। नाज़रीन, प्रोग्राम अंदाज़े जहाँ आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू होती रहेगी, मगर यहाँ पर एक ब्रेक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर जान दयाल साहब मौजूद हैं। जान दयाल साहब, कुछ दिनों कबल यूक्रेन के अबूरी वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मौजूद है, और कल नेटो के सेक्रेटरी जनरल रास मोसन ने भी उन्हीं के बयान का हवाला दिया और कहा कि यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने यह कहा था। कुछ अरसे में दो अहम लीडरों की तरफ से, यूक्रेन के वज़ीर आज़म और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से तीसरी आलमी जंग की बात ज़बान पर लाने का क्या मतलब हो सकता है?
मेरा ख्याल है कि मतलब साफ है, मतलब है रूस को किस तरीके से डराया जाए, किस तरीके से उसको बताया जाए कि पूरा दुनिया एक तरफ है और रूस अकेला एक तरफ है। इसको अंग्रेज़ी में ब्लैकमेल कहते हैं, कोअर्शन कहते हैं, थ्रेट कहते हैं, मगर ये ऐसी थ्रेट है जिसको हर कोई जानता है कि इसमें कोई दम नहीं है। आज के ज़माने में तीसरी आलमी जंग की बात करना थोड़ी दूर की फेंकी हुई बात लगती है। अलावा इसके उनके देशों में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या लोग जंग की तामील करेंगे, क्या इंग्लिस्तान में, क्या यूरोप में जंग की तालीम करेंगे, आज अफ़गानिस्तान में जो थोड़ी बहुत फौजें रह गई हैं उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर, यूरोप के अंदर कितना गुस्सा है, कह रहे हैं हर एक जवान को वापस लाओ, हर एक फौजी को वापस कर लाओ, उसके घर वापस पहुंचाओ। तो ये भपकी है, ये एक तरीके से कहा सकता है गिदड़ भपकी है, मगर बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। क्या अमेरिका, क्या इंग्लिस्तान, क्या यूरोप अपनी धमकी को किसी तरीके से कारवर करने के लिए कुछ करेगा क्या? क्या जैसे मैंने पहले कहा था, क्या खरीदी हुई फौजों के ज़रिए, खरीदे हुए लोगों के ज़रिए, जिसको करोड़पति लोग, जिसको अमीर वहाँ के मिल ओनर्स, बिलियनर्स पैदा कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसा वजूद खड़ा करेगा कि रशिया की फौजें बॉर्डर को क्रॉस करें ताकि कोई बहाना मिल जाए? मेरा ख्याल है ये बहाना ढूंढने की जो तरतीब है इसमें कोई ज़्यादा वजन नहीं है और ये ज़्यादा सक्सेसफुल कारगर नहीं रहेगी, ये मेरा पत्थर है। क्योंकि तीसरी जंग की लड़ाई बात करना बड़ा आसानी है, मगर पिछली जंग के बाद 60 साल रह गए, हो गए 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद आयरन कर्टन आया, कोल्ड वॉर आई और गई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती है कि उस तरीके की आग फैले, उस तरीके की जंग हो, उस तरीके की तबाही हो जिसमें कोई भी जीतता नहीं है।
जी,
ऐसी तबाही में ये नहीं कह सकते आप कि सारे लोग रशिया के ही मरेंगे, रशिया भी कुछ करेगा।
जी
मेरा ख्याल है आज के ज़माने में सरकारें चाहे कितनी भी धमकियां दें एक दूसरे को, जो मामूल है, जो लोग हैं वो अभी तैयार नहीं है, ना कभी होंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 किसी तरीके से भड़क पड़े। ये एक नॉर्थ कोरिया नहीं है जिसको आप कह सकते हैं रोग गवर्नमेंट है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, कुछ भी कर सकता है, ये बात नहीं है। यूक्रेन भी चाहे कितना भी एंटी रशिया हो वो भी जानता है हकीकत क्या है, वो भी नहीं चाहता है कि हज़ारों की तादाद में यूक्रेन के लोग मारे जाएं।
जी यकीनन
वो देख रहा है कि रशिया से कितनी चीज़ें छीन सकता है, कितनी चीज़ें झवट सकता है, मगर यूक्रेन के अंदर 60% लोग और जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं वहाँ पे तो कई जगह 100% ही है, उनकी बात भी सुनी जाएगी, वो भी उस इलाके के बाशिंदे हैं, उनकी आवाज़ क्या नहीं सुनी जाएगी? तो मैं नहीं मानता कि कल में या परसों में या अगले साल तीसरी जंग शुरू हो जाएगी, मगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उकसाना बंद नहीं होगा।
जी बहुत शुक्रिया। बेग साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सारा मसला इस वक्त जो रूस और अमेरिका और मगरिब के दरमियान छिड़ा हुआ है वो 3 जमहूरियाओं खुद साख्ता, एक तो क्रीमिया जो खुद रूस में शामिल हो गया है वहाँ पर जो रेफरेंडम हुआ था, और अभी दोनेस्क और लुहांस में जो रेफरेंडम हुआ है इसी को लेकर इस वक्त जो शिद्दत अख्तियार कर गया है मामला वो ये है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम गैर कानूनी जबकि अवाम ने वोट दिया है, तो जो मगरिब की तरफ से कहा जा रहा है कि गैर कानूनी है, तो क्या दलील है मगरिब की ये रेफरेंडम गैर कानूनी है?
देखिए जी, दलील तो बन जाती है किसी की भी हो, मतलब उनकी तरफ से कि ये जल्दी में हुआ है, कुछ इस वजह से रेफरेंडम इन लोगों ने करवाया, कुछ ये दलील दी जा रही है, और भी इसके अलावा काफ़ी है इनकी तरफ से कुछ उधर पेश किए जा रहे हैं। असल में बात यही है कि वो सिर्फ उसी तरह के उकसाना चाह रहे हैं किसी भी तरह के, रशिया पीछे हट जाए और ये मतलब यूक्रेन इनके पास मुकम्मल तौर पर आ जाए और ये इलाके ना जाएं यूक्रेन के हाथ से रेफरेंडम के बाद, क्रीमिया के जो चले गए हैं स्पेशली। तो मेरा ख्याल यही है कि मतलब जैसा कि उन्होंने कहा कि जारी बात है तीसरी जंग का तो नहीं है ख़तरा, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ऑपरेशन हो सकता है, फौजी ऑपरेशन एक छोटा सा, क्योंकि सब मेरे कुछ हैं, मैं दोस्त हैं जिस रशियन, अगर मैं उनसे कभी बात करूं और से कभी गुफ्तगु हो तो वो यही कहते हैं कि जिस अफगानिस्तान की जो पहले वॉर हुई थी जो रशिया ने लड़ी है वो एक ऑपरेशन था, उनके लिए जंग नहीं थी, किस्म का ये ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है अगर वो ताकतें अगर बीच में बड़ी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल एक छोटा ऑपरेशन हो सकता है उनके ख्याल में, क्योंकि उनकी फ़ौज पहले भी कुछ मौजूद हैं, उनके फ़ौज है वो हेल्प कर रही है वैसी जो प्रो रशियंस हैं उनकी जो कि मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल यही है।
जी बहुत शुक्रिया। ताहिर वासी साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुसलसल मगरिब की तरफ से रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद की जा रही, और आप और दुनिया जानती है कि जैसा कि अभी आपने बार बार अपने बातों में इस जानिब इशारा किया कि रूस की गैस से ही वहाँ चूल्हे जलते हैं बेस्तला, तो रूस कब इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है?
जब इन्होंने कोई इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि रशिया और मेरा ख्याल है कि इनके अंदर ये बात मौजूद है, हमारे यूरोपियन जो पार्टनर्स हैं और बरतानिया और अमेरिका की ये बात इसको समझते हैं कि हम रशिया को एक हद तक ही धकेल सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं धकेल सकते। एक वजह जैसे कि आपने फरमाया और मैंने भी अर्ज़ की कि ये है कि इनकी गैस यहाँ से आती है, इनके चूल्हे यहाँ से जलते हैं, और यूक्रेन बहुत बड़ा उसका एनर्जी जो है सारी रशिया से आती है। दूसरी बात जो बहुत अहम है और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जिन इलाकों में रेफरेंडम हुआ है उन रेफरेंडम में परसी कोई बेईमानी नहीं हुई, जब वहां की आवाम यह चाहती है कि हम रशिया के साथ मिलें तो उस तरह आवाम के खिलाफ एक्शन होगा, ये रशिया के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, ये जंग रशियन से नहीं होगी, ये बुनियादी तौर पर यूक्रेनियन जो वहां के यूक्रेनियन लोग हैं उनसे जंग की जा रही है कि उन्होंने अपना हक रायदेही इस्तेमाल क्यों किया। और इंटरनेशनल अवाम और इंटरनेशनल मीडिया एक हद तक तो इसमें जैसे आज तक वेस्ट का थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन जब वहाँ की निहत्ती अवाम मरेगी तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को बर्दाश्त ना करे, और अमेरिका और यूरोप जिनका ऑलरेडी मॉरल बहुत कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है और बहुत नीचे लेवल पे आए हुए हैं दुनिया की निगाह में, इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने जाके रशिया पे हमला करना है और रशिया से इनको आजाद करवा लेना है, ये बात ये है कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को रशिया में शामिल कर रखा है, जिनकी कल्चरल लैंग्वेजेस और हिस्टोरिकल टाइज हैं रशिया के साथ, उन लोगों को मारा जाए कि तुमने ये क्यों चूज किया कि तुम जो जाके रशिया के साथ मिल गए हो और तुमने यूरोप को छोड़ दिया है। तो किसी भी मुल्क की आवाम को इस बात की सजा देना आजकल के दौर में इंतहाई मुश्किल है। तो जो आप फरमा रहे हैं कि इंतहाई इकदाम, मेरा ख्याल है कि ये भी इंतहाई इकदाम से बाज रहेंगे और रशिया भी इंतहाई इकदाम से उस वक्त तक बाज रहेगा जब तक कि ये फुल इंस्टिगेशन पर ना आ जाएं। वो बेशुमार मरतबा ये कह चुका है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि यूक्रेन का, जिसके आप बहुत बड़े खैरखा हैं, उसका बिल एनर्जी का जो हमारा हमने रेज किया हुआ है उस बिल को पे करें। आप यूक्रेन के जो आवाम इस वक्त आपके साथ है, कम अज कम उनकी ही कोई फाइनेंशियल एड करें। आप उन लोगों की जो यूक्रेन में जिंदा हैं उनकी मदद की बजाय आप उस मिलिशिया को एड दे रहे हैं, उस मिलिशिया को उकसा रहे हैं कि वो जाके उस आवाम के खिलाफ जंग करे जिनको आज रशिया ने पनाह दी है, जिनको रशिया ने इलाक में अपने साथ मिलाया है और जिनको रशिया ने खुशामदेद कहा है। तो इनका कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है और ये हो सकता है कि फौजी थ्रेट थोड़े बहुत और दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हद तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर बहुत नेशनलिस्ट और अपने सेल्फिश गवर्नमेंट्स हैं और ये अपने जाती और अपनी आवाम के मफाद को कभी भी इस हद तक कुर्बान नहीं करेंगे कि वो खुद उसका खमियाजा भुगतें और यहाँ पर गैस ना हो और यहाँ पर बिजली ना हो।
बहुत शुक्रिया जान दयाल साहब। मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल करना चाहूँगा कि अब जबकि मगरिब अमेरिका एक तरफ और रूस एक तरफ है, तो ऐसे में जो पाबंदियों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इससे ज़्यादा नुकसान आपके ख्याल में किसको होगा, रूस को होगा या मगरिब और अमेरिका को होगा?
मेरा ख्याल है मॉरल नुकसान अमेरिका को होगा और माली नुकसान, एनर्जी का नुकसान इंग्लिस्तान और यूरोप को होगा। ये तो बात साफ़ है, क्योंकि अमेरिका इतना दूर है, दुनिया के दूसरी पार है, उसके इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर यूरोप उसी लैंड मास का हिस्सा है, उसी के साथ मिला जुला है, उसकी गैस वहाँ से आती है, उसके आना जाना उधर से होता है, उसके ट्रेडिंग लिंक्स हैं, उसको सामान बेचना है, उसको पैसा लाना है। उसको रशिया से इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेने का बहुत बड़ा खामियाजा उसके पास उसको भुगतना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक जो मैं मॉरल इश्यूज़ की बात कर रहा था, पब्लिक इमेज की बात कर रहा था, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बात होगी, दुनिया में बाकी थर्ड वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, एशिया में, बाकी जगह क्या विचार आएगा, उसमें एक बात बहुत ज़रूरी, उन्होंने लंदन से बड़ी अहम बात आई है कि जो लड़ाई हो रही है या जो आगे लड़ाई करना मांगते हैं, ये रूस की फौज से नहीं हो रही है, ये यूक्रेन के लोगों से ही हो रही है और सिविलियन मर रहे हैं, फौजी नहीं मर रहे हैं। फौजी भी कहते हैं 650 तक शायद हलाक हो चुके हैं, मगर जब भी कोई मिलिशिया लड़ रही है या अगर वेस्ट की तरफ से कोई अटैक होता है, उसमें सिविलियन मरेंगे, जो कि वेस्ट के खिलाफ, जो मिलिशिया के खिलाफ सड़क के ऊपर घेराबंदी किए हुए लोग हैं, जिस तरीके से हमने देखा सीरिया में, जिस तरीके से बाकी देखा, जब रेजिम चेंज एक बात है जहाँ पर मिलिट्री एक्शन आप ले लेते हैं, मगर यहाँ पर लोग आपके खिलाफ हैं, यहाँ पे लोगों का कुछ तबका ही आपके साथ है जो कि वैसे ही गैर रूसी है, जो रूसी जबान नहीं बोलता, जो कल्चरली और एथनिकली रूसी नहीं है, बाकी तबका रूसी है, वो रूस के साथ जाना मांगता है। उसने एक बारी नहीं, कई बारी बता दिया है, रेफरेंडम के ऊपर रेफरेंडम में बता दिया है, और रेफरेंडम की लीगैलिटी कौन करेगा, क्या अमरीका जज करेगा रेफरेंडम की लीगैलिटी या वहाँ के लोग करेंगे?
जी,
रेफरेंडम उन्हीं ने अपने आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया है, क्रिमिया ने अपना हक जाहिर करने के लिए, अपने जो उसके हकूक़ है, कानूनी हकूक़ है, उसका इस्तेमाल करते हुए किया था, जब किया था तो, जब वो रशिया में दोबारा जाके मिला, अपने कानूनी हकों के हिसाब से मिला, कोई गैर कानूनी, उसने कोई यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन नहीं तोड़ा है, उसने इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ा है। आप किस तरीके से उसको कह पाएंगे कि ये कानून की सरहद को पार कर गया है? तो मॉरली अमरीका को एक बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा अगर वो कुछ इस तरीके की गैर जिम्मेवार हरकत यूक्रेन में कर डालता है तो।
जी बहुत शुक्रिया। बैग साहब, मैं यहाँ पर यह सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप देखें, किसी भी मुल्क को किसी भी फरीक से माहिदा करने या ना करने का पूरा हक हासिल होता है। जो सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है बहरान, वो ये कि विक्टर यानकोवी जो उस वक्त के कानूनी सदर थे यूक्रेन के, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती माहिदा करने से इनकार कर दिया था। एक सदर की हैसियत से ये उनका हक बनता था या नहीं? दूसरी बात, अगर उन्होंने इनकार किया तो यूरोपीय यूनियन के साथ किया, अमेरिका इस बीच में कहाँ से आ गया, और क्या यही वजह है सिर्फ यूक्रेन में बहरान पैदा करने की?
जी बिल्कुल, ये हो सकती है वजह, क्योंकि ये माहिदा उन्होंने जो इनकार कर दिया, इसके अलावा क्या कहते हैं, उसके बाद से ये हालात ख़राब होना शुरू हुए। और मेरा ख्याल यही है कि यही वजह बनी है। अब इसके बारे में मैं कुछ इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस बारे में थोड़ा नहीं है कुछ इतनी मालूमात
जी,
इस वक्त।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। जी ताहिर वासी साहब, आप क्या फरमाना चाहेंगे? क्या यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन से माहिदा नहीं हुआ, या मगरिब और अमेरिका को यूक्रेन के मैदान में और रूस के ताल्लुक से अपने अंदाज़ों में कुछ गलती हुई?
जी अली, बात जैसे कि आप कह रहे हैं, ये जो ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये ही बुनियादी वजह बनी थी। क्योंकि जब रशिया ने अपना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इससे इनकार किया, तो उसी वक्त जो है इस पे प्रेशर बनवाया गया। वो कुछ हज़ार लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया गया कैपिटल सिटी में, और जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पे इन लोगों को असलाह दिया गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्नाइपर्स ने दोनों पार्टीज पर असला जो है वो उसकी बौछार की, जिसमें दोनों के लोग मारे गए, और उसके बाद इसको क्राइसिस को जो है बहुत बढ़ावा दिया गया। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इनिशियली जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ, उस वक्त अमेरिका ये चाहता था कि उसकी सुपरमेसी कायम हो, और यूरोपियन ये चाहते थे कि इनकी सुपरमेसी कायम हो। तो इनिशियली कुछ थोड़ी बहुत आपको चपकलिश, अगर आप सर्च करेंगे, वो अमेरिका और यूरोप में भी नजर आएगी, क्योंकि बात बुनियादी तौर पर यूरोप की थी, और ये एक माहदे को जिसको उन्होंने दस्तखत करने से इनकार किया था, वो यूरोप के साथ माहदे था, उसमें अमेरिका का ना कोई लेना था ना कोई देना था। लेकिन अमेरिका ने इसको चाहा कि हम इसको यूज़ करें रशिया पर प्रेशर डालने के लिए, जो उनकी एक आपस में एक थोड़ी बहुत सरजंग चल रही थी सीरिया के हवाले से और दूसरे मामलों में। तो अमेरिका ने खामखा इसमें आके अपनी टांग अड़ाई, और जब ये टांग अड़ा ली तो हमेशा की तरह वो खुद अपने आप को, अपनी फौज को पीछे रखता है, अपने अवाम को वहां पे मरने नहीं देता, और उसी मुल्क में से कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, उनको पैसे देता है, जिसे हम किराए के कातिल कहते हैं, और उनसे ये काम लेता है कि उस मुल्क की अवाम को मरवाए। तो देखने वाले भी जाहिर है इतने बेवकूफ नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के जो बाशिंदे, जिनको नियो नाजी कहा जा रहा है, ये लोग एकदम से, इनके पास असलाह कहाँ से आ गया, इनके पास पैसा कहाँ से आ गया, इनको कौन सी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और ये क्यों अपने ही मुल्क के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका का इसमें इनिशियली कोई लेन देन नहीं था, लेकिन अमेरिका ने इसको रशिया का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, और अब वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस वजह से ये लड़ाई शुरू हुई, वो बेशक यही बात थी कि उस ट्रेड एग्रीमेंट को ना दस्तखत करना था सदर का, जिसके बाद से ये तमाम सिलसिला शुरू हुआ, और रशिया ने इसमें कोई मुदाखलत उस वक्त नहीं की थी। लेकिन जब ये बात सामने आ गई कि खुद वहां की अवाम ने यूक्रेनियन हुकूमत के खिलाफ जो है, वो जब उन्होंने ये बिल पास किया कि रशियन लैंग्वेज को ख़त्म किया जाएगा और रशिया से टाइज खत्म करनी जाएंगी, जो इम्पोज हुकूमत ने ये शुरू किया, तो उस वक्त जो है अवाम खुद यूक्रेन की उस इम्पोज हुकूमत के खिलाफ उठी, और उन्होंने रेफरेंडम के बाद ये फैसला किया कि हम जाके रशिया से मिलेंगे। तो इसमें रशिया की उस वक्त तक इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। क्या रशिया ने ये बिल पास करवाया था कि रशियन जुबान को जो है यूक्रेन से ख़त्म किया जाए? ये बिल तो इम्पोज गवर्नमेंट ने पास किया था। जब ये बिल इम्पोज गवर्नमेंट ने पास किया था, तो रशिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें से कहाँ हुई?
बहुत बहुत
और जब उस
शुक्रिया
बिल के
आपका।
खिलाफ लोग इकट्ठे हुए।
जी बहुत
शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। जान दयाल साहब, आप देखें कि दोनेस्क और लुहांस्क दोनों ने अक्वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि अब जबकि हमने
जी
रेफरेंडम करा लिया है, और दोनेस्क में तो अब वजीर आजम नहीं मुकर्रर हो गया है, और वहाँ पर खुद अंदर दोनेस्क के अंदर
जी
काम काज उनकी हुकूमत का जो उन्होंने बनाया है शुरू हो चुका है, तो अब जब इन दोनों जमहूरियाओं ने, जो कि अब हम खुद साख्ता अभी फ़िलहाल कह रहे हैं, अक़वामे मुत्तहिदा से मुतालबा कर लिया है कि उन्हें तस्लीम किया जाए एक आज़ाद जमहूरिया और मुल्क की हैसियत से, तो क्या आप समझते हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा इस सिमत में कदम आगे बढ़ाएगी, उनको तस्लीम करेगी?
मेरा ख्याल है इन दो टुकड़ों को पूरी आज़ादी है, उनके हक है ये कि वो कहाँ जाना मांगते हैं, अकेले रहना मांगते हैं या रूस के साथ जाना मांगते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो उनका वजूद है उसको कबूल करना चाहिए यूरोप को, और उनको एक तरीके से अपने गले लगाना चाहिए, क्योंकि एक नया अंदाज़ है लोगों का अपने फ्यूचर को क्या मांगते हैं। इसका डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, अपने हकों को मांगना। और इसको अगर वेस्ट कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो उनका तो बिल्कुल उनका फ़र्ज़ बन जाता है कि डेमोक्रेसी के इस एस्पिरेशन को पूरी तरह माने। मैं एक और बात कहना मांग रहा था जो अभी तक से छूट गई है, ये जो सारा ड्रामेबाजी हो रही है इसमें एक तरीके से नेटो को भी ज़िंदा रहने का एक कुछ बहाना मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके नेटो का वजूद ख़त्म होता जा रहा है, उसकी ज़रूरत कोई नहीं महसूस कर रहा है। और इस तरीके से अब नेटो भी एक स्टेटमेंट दे रहा है, ये जा रहा है वो जा रहा है, ये एक जो मिलिटरिज्म है वेस्ट का उसको भी ज़िंदा रहने के लिए एक बहाना मिल रहा है। और यहाँ पर मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को ठीक से देखना पड़ेगा कि क्या अब समय आ गया है, क्या अब टाइम आ गया है कि नेटो जैसे फोर्सेस को आप डिसबैंड कर दिया जाए, भविष्य में फ्यूचर में इनका कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, दिल्ली से जॉन दयाल साहब और हॉलैंड से मिर्ज़ा बैग साहब और ताहिर वासी साहब लंदन से थे। और ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल इस वक्त सामने है और जो नतीजा निकलता है इस गुफ्तगू का, वो ये कि मगरिब और अमेरिका यूक्रेन में अपना खेल खेलना चाहते हैं, और अब एक रविश बन चुकी है कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने और अपनी मुखालिफ हुकूमत को गिराने के लिए प्राइवेट मलेशिया का इस्तेमाल, या जिसे हम एजेंट कह लें या दहशतगर्द कह लें, उनका इस्तेमाल एक चलन बनता जा रहा है। और अगर फौरी तौर पर आलमी बरादरी ने इस तरफ तवज्जो और ध्यान न दिया तो शायद ये सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरा बन जाए। लेकिन जिस तरह से इस वक्त रूस ने स्टैंड लिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया और जिस तरह से उसने कहा है कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, तो ऐसा ही लगता है कि अमेरिका और मगरिब को यूक्रेन के मैदान में कम से कम अपने अंदाज़ों में गलती साबित हुई, और शाम में ये क़वतें तो अपनी मुँह की खाई चुकी हैं। बहरहाल अब सूरत हाल एक फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है, जमहूरियाओं ने अपनी आज़ादी और यूक्रेन से अलहदगी के हक़ में रेफरेंडम करा के नतज का ऐलान कर दिया है, और वहाँ जंग भी शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि यूक्रेन का बहरान आइंदा चंद दिनों और आइंदा चंद हफ़्तों में क्या करवट अख्तियार करता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए।